बड़े प्यार से दुरूशरीफ पढ़े कि अल्लाह ताला मेरे दिल से हर ख्याल को निकाल दे, वसवसे भी निकल जाएं, सवालात भी निकल जाएं और मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब पे गौर व फिक्र कर सकूं और आज के सबक से शायद मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा मुंसलिक हो कि जो मेरे लिए अल्लाह के मामलों को समझना और अल्लाह के दीन की हिकमतों को समझना आसान कर दे। क्योंकि पहली ही आयत में हम बहुत ही खूबसूरत बात करने वाले हैं और आयत है 40। आगे देखने से पहले पीछे देख लिया हमने कि वो ये लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को इनकार किया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हुक्म दिया जाता तो तकब्बुर करते, फिर उनकी जुबानें बोलती थी कि क्या नाउज़ुबिल्लाह एक शायर मजनू के कहने पर हम अपने इलाहों को छोड़ दें, खानदानी रिवायात छोड़ दें, बाप दादा के तौर तरीके छोड़ दें। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बल जा बिल हक की वसद्दकल मुरसलीन, ये जो मर्जी कहते रहे, असल बात ये है कि वो तो हक लेकर आए हैं और उन्होंने तस्दीक की तमाम रसूलों की। तो ऐसे जालिमों का अंजाम क्या है, इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, ये तो चखने वाले हैं दर्दनाक अजाब को। और कोई जुल्म नहीं किया हमने आप पे, वमा तुज़ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, ये तुम्हारे किए कराए का बदला है, ये तुम्हारे अपने करतूतों की सजा और जजा है, कुछ इसके अलावा नहीं। हाँ मगर अब एक और किरदार, आयत 40, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के मुखलस बंदों के। ये है क्लाइमेक्स इस सूरत का। आप इधर एक बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, एक लाइन लगा सकते हैं। पिछली सूरत में जो तस्करे थे वो तो मुशरिकों के थे और उन्होंने जो अल्लाह के नबी के साथ मामला किया उसकी बातें थी, लेकिन यहां से आगे सूरत के खात्मे तक अल्लाह ताला चुने हुए बंदों की बातें बताते हैं। पहला सवाल पैदा होता है कि मुखलस कौन होता है, पीछे भी बात हुई लेकिन कोई बात नहीं, ये बात तो बार बार करें तो भी भूलती है, अमल में तो बहुत ही भूल जाती है, तो दोहरा देती हूँ। लफ्ज़ मुखलस खा लाम स्वाद से है, इसी से लफ्ज़ खलसा, खलूस, मुखलिस, खालिस करना है। अगर आप लिख के देखिए मुखलस और मुखलिस दोनों को लिख ले अलग अलग, मुखलस क्या है, जिस पर कोई काम किया जाए, और मुखलिस तो ये कौन सा वजन होगा, मुफ़इल, फाइल का वजन होता है अरबी जुबान में, ठीक है। तो गोया के मुखलिस कौन है, जो अभी खालिस होने की कोशिशों में लगा हुआ है। इमेजिन करें, साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, बर्तन साफ ही नहीं हो रहा, फिर आप और रगड़ते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा इसके ऊपर स्टील वूल लगा दूं, थोड़ा विम डाल दूं, तो आपकी ये कोशिशें आपको और से और चमका रही हैं, लेकिन एकदम आप कहते हैं हो गया, साफ हो गया बर्तन, तो फिर आप मुखलिस से मुखलस हो गए, बहुत बड़ी बात है। हम अमूमन कहते हैं मुखलिस बनो मुखलिस बनो, तो मुझे आप बताइए कि मुखलिस बड़ी चीज है या मुखलस बड़ी चीज है। मुखलस बड़ी चीज है, मुखलिस वो है जो कीप स्ट्रगलिंग, अभी इखलास की कोशिशों में है, अभी दिल के बर्तन को साफ करने की कोशिशों में है, अभी दिल में जो खोट खपट है उनको निकाल रहा है। और याद रखिए सारी जिंदगी बंदा मुखलिस बनते की कोशिशें करता है और आखिर में मुखलस बन जाता है और अल्लाह की तरफ से आवाज लगती है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जीला रब्बी की रादियतम मर्दिया, कि चल मेरे खालिस, मेरे चुने हुए बंदे, अब तुझे मैं लेके जाने को तैयार हूं। तो यहां आप देखिए अंबिया कराम के तस्करों से पहले मुखलस का लफ्ज करके बता दिया, सारी जिंदगी के मुजाहिदों, रब की इतात को, रब की बात पे समेना वाताना कहने को, इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन की सूरत में, या वह इज़ इब्तला इब्राहीम और रब्बहू की सूरत में ये लोग मुखलस बन गए। चुपके से अपने लिए दुआ करें, अपनी नस्लों के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें भी मुखलस बना दे, बहुत थक गए हैं दो रंगी चाल से, हमने जिंदगी का भी असल मजा भी नहीं लिया, क्योंकि कभी गर्म होते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं, कभी दीन की गर्मी आती है तो फिर एकदम ऐसी ठंडक आती, कई कई दिन तक ईमान की हरारत ही नहीं महसूस करते अपने दिल में, और इस तरह करते खराते हम गर्म ठंडे गर्म ठंडे, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई की कैफियत में आ जाते हैं, मजहब जबीन बेन सालिका, कभी इधर के कभी उधर के। तो आपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुखलस कर दे। मैं जब लफ्ज़ मुखलस कहती ना तो मेरे जहन में पता क्या आता है, कभी आपने भी ड्रामों में या हॉस्पिटल में देखा होगा किसी की हार्ट बीट काउंट करती हुई दिखाते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तेजी से फिर एकदम सीधी कर देते हैं, لوگ کہتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں کہتی ہوں یہ بندہ مخلص بن گیا۔ ایک ایمان والا ساری زندگی اسی جد و جہد میں رہتا ہے، ابھی یہ دھبا پڑا ہوا اس کو اتارنا ہے، ابھی یہ دھبا اتارنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ادھر سے صاف کیا، وہ ختم، وہ کیا۔ آپ اپنے گھر کو بھی تو مخلص کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت، رینوویٹڈ ہر وقت، بس یہ کر لوں پھر ٹھیک ہے، یہ کونا صاف ہو گیا یہ ٹھیک۔ جب سارا گھر صاف ہوتا ہے اتنے میں دوسری طرف کا کونا پھر خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک پکاتے، ایک کھلاتے، ایک سنبھالتے، ساری زندگی انہی کوششوں میں گزر جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بندے کی روح کو قرار آ جاتا ہے اس دن جب وہ مخلص بن جاتا ہے، اور اللہ مجھے اور آپ کو مخلص بنا دے۔ کیا ہوگا ان مخلصین کے لیے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے جو ہیں، جن کو اللہ نے خود چن لیا۔ اور لفظ دیکھیے، عباد ہے، عبد سے ناس نہیں کہا، پہلے عبدیت آتی ہے، پہلے بندگی کا رنگ آتا ہے، پھر انسان کے اوپر اخلاص کا رنگ چڑھتا ہے۔ پہلا مرحلہ بندہ بننے کا ہوتا ہے، پھر مخلص بنتے ہیں۔ یا ایک چھوٹا سا نقطہ پھر دل میں اللہ نے ڈال دیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی بڑی نیکیاں کریں گے، بھائی اٹھو نماز پڑھو، نہیں نہیں میں تو مکے میں جا کے پڑھوں گی بس، اب تو جانا ہی ہے، وہاں جا کے پڑھ لیں گے۔ اچھا بھی روزے رکھو، نہیں میں تو بس اب رمضان سے پہلے خوب مستیاں کر لوں، بعد میں رکھوں گا، پھر سارے گناہ رمضان میں تو چھوڑنے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بڑے موقع آئیں گے کوئی نہیں، پھر بڑے موقع ہماری زندگی میں نہیں آتے تو مسرتیں بھرتے ہیں، روتے ہیں، ہائے ہمارے گناہ، ہائے ہمارا نصیب کوٹا، ہائے ہم ایسے، ہائے ہم کیوں جلتے ہیں، ہم کیوں دکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، لکھ لیں، بڑا بڑا کر کے لکھ لیں اپنے نوٹس پہ، نہ لکھیں بے شک دل کی تختی پہ لکھ لیں، جب آپ نیکی کے چھوٹے چھوٹے موقعوں کو لبیک اللہم لبیک کہہ کر پکارتے ہیں نا، جی یہ نیکی ہے میں کروں گی، اچھا یہ موقع آ گیا میں ہاتھ ڈالوں گی، میں اس میں والنٹیئر کروں گی، میں آگے بڑھوں گی، میرا نام لکھیے، مجھے جلدی سے ڈال دے، دیکھیں پہلے مجھے بتائیے گا پھر کسی کو بتائیے گا، دیکھیں جب میں نہ کر سکوں پھر کسی کو دیں۔ آپ اس طرح کرتے کرتے عباد اللہ میں شامل ہو جائیں، عبدیت کا رنگ آ جائے، آمت اللہ بن جائیں۔ جب یہ کر لیں گے تو واللہ ہی اللہ آپ کے راستوں میں یوں مخلص بننے کے مواقع لائے گا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے تو جذبے سچے نہیں ہیں، اتنی تو کوئی میرے اندر تڑپ نہیں ہے، یہ اللہ میرے اوپر اتنے انعام کیوں کر رہا ہے۔ تو چھوٹی نیکیوں کی قدر کرنے والوں کو بڑی بڑی نیکیوں کے موقع ملتے ہیں، اور چھوٹی نیکیاں بلکہ بڑی بڑی نیکیوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کر ضائع کرنے والے پھر مخلص نہیں ہو پاتے، پھر وہ السابقون الاولون میں نہیں جا سکیں گے، پھر وہ بس وہی ہے اصحاب الیمین، اور اللہ ان کو مجھے کہیں نہ کہیں جنت میں کھپا دے، اتنا ہی بہت ہے۔ تو جنت کے گریڈز لینے ہیں تو کیا ہوگا، مخلص بننا پڑے گا۔ کیا ملے گا، اب ذرا امیجن کریں، خود کو جنت میں لے جائیے، روح تو جسم سے نکل گئی اطمینان کی حالت میں، اب اللہ چننے والوں کو کیا خوشخبریاں دیتا ہے، اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اب رزق معلوم سے کیا مطلب ہے، ان کو معلوم ہے، اچھا پاکستان میں تھے دال چاول کھاتے تھے تو جنت میں بھی گئے تو وہاں بھی دال چاول تھی، یہ معلوم ہے، یہ معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اب اس کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن میرا ان آیتوں پہ آ کے دل چاہتا ہے بس میں آیتیں پڑھتی جاؤں، میں ادھر ادھر زیادہ بات ناک پھیلاؤں، کیوں کہ رزق معلوم سے کچھ بھی ہو، ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کا رزق معلوم کیا ہوا ہے، ان کو بھی پتا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے، جب کبھی ان کو وہاں رزق دیا جائے گا، کلما، جب کبھی وہاں رزق دیا جائے کیا کہیں گے، یہ تمہیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور ان کے اعمال سے ملتا جلتا رزق ہوگا، معلوم میں یہ بات بھی آتی ہے، ان کو خود پتا ہے اپنی زندگی میں کہ ہمیں وہاں کون سے درجے کا کھانا ملنے والا ہے، ہم نے کس درجے کی بکنگ یہاں کروائی ہے، وہاں اصحاب الیمین میں نام لکھوایا ہوا ہے یا ہم نے مقربون میں لکھوایا ہوا ہے، ان کو پہلے پتا ہے، ہر انسان کو پتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ سورت قیامت میں آپ پڑھیں گے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ، انسان دوسروں سے چھپ سکتا ہے، خود سے نہیں چھپتا، تو ان کو اپنا رزق پتا ہے۔ اور سچی بات بتائی، ایک سمجھدار طالب علم پیپر دے کر آئے، پوچھو کیسا رہا، کتنے نمبر آئیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، معلوم ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوگا، نہیں، سب معلوم ہے۔ تو ہر بندہ اپنے اندر کو جانتا ہے، جتنی تڑپ، جتنی طلب، جتنی مشکل حالات میں سے نیکی کی، جتنا کوئی نہیں کر رہا تھا تو آپ نے کر لی، کتنا تھا جس وقت عام دن تھے ان دنوں میں تو نیکیوں میں بھاگ دوڑتی، پھر نیکی ہاتھ سے نہیں ہوتی، دل دماغ بھی ادھر ہے، سوچ کہیں اور جا سکتی ہے، نہیں جانے دینی، مجھے اپنے رب کی بات کو سیکھنا ہے، مجھے سکھانا ہے۔ ہر وقت ہم دیکھیں ان امتحانوں سے نہیں گزرتے، हमारी सोच भटक जाती है। जरा चार मेहमान वीकेंड पे हमारे घर आने वाले हों, पूरा वीक हमारी सोच भटकी रहती है, ये बनाऊंगी, ये करूंगी, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सही करना है, वो भी सही करना है। ऐसे लम्हों में जब इंसान अपनी सोच को भी शिर्क में ना डाले, तो अल्लाह ताला फिर उसको बता देता है दुनिया में कि आज की इस नेकी का बहुत ही अजर मिलना है मुझे। रोज आने का अजर मिलता है, लेकिन जो आज आने का अजर है ना, ये मुझे पता है कि मुझे बचा देगा इंशाल्लाह। रिस्क मालूम, और रिस्क का ताल्लुक सिर्फ खाने पीने रोटी कपड़े से नहीं है, रिस्क तो मोहब्बत का रिस्क भी है, शायद अल्लाह के दीदार का रिस्क हो, चाहे शायद वहां अल्लाह ताला हमसे पता नहीं किन किन चीजों का रिस्क हमें दिखा दे, हमने तो सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। फवाकिहु वहुम मुकरमून, हर तरह के मेवे और वो बाइज्जत तो इकराम होंगे। देखिए, जब रिस्क कह दिया तो फवाकिहा की क्या जरूरत थी, फाकिहत उनकी जमा मेवे, यहां बता दिया कि उस रिस्क में सिर्फ मेवे नहीं है और बहुत कुछ है। हाँ, फल भी होंगे, और ऐसे ही नहीं लाके पटख दिए जाएंगे सामने, स्माइली फेसेस के साथ, इज्जत के साथ तुम्हें पेश किया जाएगा। मुकरमोन, किसी को खिलाना या कुछ देना ये एक चीज है, और उसके सामने पेश करने का अंदाज कैसा होता है। मैं अक्सर इस चीज को फील करती हूँ, मुख्तलिफ लोग बस दफा आपके सामने खाना रखते हैं ना, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि लोगों का चेहरा, उनके हाथ, उनका पोस्चर बिल्कुल इस बात की गवाही नहीं दे रहा होता कि वो खुशी के साथ कर रहे हैं कि नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके चलने, उनके फिरने, उनके बात करने रखने के अंदाज से पता चलता है कि ये आपको इज्जत दे रहे हैं। और इस पे सिर्फ एक ही मिसाल है दुनिया में, बात सिर्फ समझाने के लिए, एयर होस्टेस, आप पानी का ग्लास मांगे, वो ला के यूं पटके आपके आगे, थोड़ा सा नीचे ही गिर जाए, ना स्माइल देखे कहीं और चीज आपके आगे रख के भाग जाए। उनको दुनिया के 4 घंटे की फ्लाइट के लिए इतनी ट्रेनिंग दी जाए, तो दुनिया में इंसान जब रहे तो उसको कितना अच्छे अखलाक होना चाहिए। तो याद रखिए, आप और मैं सब, अब हम दीन के दाई हैं, हमारे चेहरों पे दीन लिखा हुआ है, लोग हमारी किताबों के नोट्स नहीं पढ़ेंगे, हमारे चेहरे, हमारे मोहरे चलने फिरने को देखेंगे। तो जन्नतियों को अल्लाह वहां इज्जत से पेश करेगा, फी जन्नात नईम, नेमतों वाली जन्नत में बैठे होंगे, अला सुरूर मुतकाबिलीन, तख्तों पर एक दूसरे के आमने सामने, सुरूर सरीरत उनकी जमा, शरीर छप्पर खट को कहते हैं, ये छोटी सी चारपाई नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी कौचीज होती थी पहले दौर में बादशाहों के लिए, कुजी सी, और उसके चारों तरफ फिर कहीं कर्टन और कहीं फूलों की झारियां। आज ज्यादा ज्यादा ये कह लें कि अब दुल्हन की मसहरी, उन मसहरियों पे बिठाए जाएंगे, और मुतकाबिलीन, मुतकाबिल की जमा, दिलों में चूके बुगज कोई नहीं, तो आमने सामने बैठने में बुरा क्या, सबसे खूबसूरत नशिस्त आमने सामने की होती, दोस्त के सामने बैठे, शौहर के साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे, पहले देखे बैठी कहूं, कम्युनिकेशन का बेस्ट स्किल है कि पहले किसी को बिल्कुल अपने सामने बिठाएं, उसको समझाएं, प्यार से तरीके से बात करें, कोई इधर है और आपका मुंह उधर, और आप बड़बड़ बड़बड़ बोलती जा रही हैं, वो पीछे हो सकता है आपके लिए फेसेस बना रहा हो, नहीं, सामने, और सामने बंदा बैठता ही उसके जिसके लिए दिल में मोहब्बत होती है। जन्नतों में दिलों में बुगज और कीने नहीं होंगे, इसलिए सामने आमने होंगे, युताफ अलैहिम बिकास मिमाइन, और फिराए जाएंगे वहां बिकास कौन से, जारी शराब के जाम का, इन पर दौर चल रहा होगा, बस इस पे तो सब परेशान हो जाएंगे अभी, हाय हाय इतनी अच्छी जन्नत और वहां शराब का जाम होगा, नहीं फिक्र नहीं करे, अभी देखते हैं, बेदा काली क्या गंदी नहीं होगी, चमकती हुई सफेद, क्रिस्टल क्लियर, गंदी बदबूदार नहीं, लज्जतिन लजीज, टेस्टी, किसके लिए, शारिबीन, पीने वालों के लिए। और शराब के जो सीक्वेंसेस हैं वो कुछ भी नहीं, ला फीहा गौलुन, ना इससे दर्द सर होगा, वला हुमन हा युनजफून, और ना इसके पीने से वो बहकेंगे, सर नहीं धुनकेंगे, वो सारी खराबियां जो शराब पीकर होती हैं वो उसमें नहीं होंगी। तो जब शराब है तो शबाब भी होगा, व इन दहम कासिरा तो तरफीन, और इनके पास नजरें झुकाई हुई बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरे होंगी, गंदी फ्लर्टी औरतें नहीं होंगी, फ्लर्ट जोन नहीं है वो, दुनिया में शराब भी गंदी और उसके बाद जिन लोगों से ताल्लुकात है वो भी गंदे, वहां के नजरें झुकाई में कासी रात, वो औरत जिसने नजरें झुकाई हो कसर से है, नमाज भी करते हैं ना कसर, छोटी करना, झुका लेना, तो नजरें झुकानी, तरफ किनारे इन आंखों के, यानी वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के बड़ी बड़ी अपनी आंखों को झुका के बैठी होंगी, कान नहुन नबे दुम मखनून, ऐसी जैसे छुपाए हुए अंडे, अंडे को छुपा दें, घोलाएं, जैसे लंबूतरी सी आंख होती है ना, ओवल बैजवी आंख। और अंडा क्यों? क्योंकि उनकी जो बाहर की झिल्ली है ना, वो अंडे की तरह सफेद होगी। खूबसूरत आंख होती है जिसकी बाहर का हिस्सा सफेद और अंदर का हिस्सा काला हो। आप जरा सोचिए, इमेजिन तो करें इन सब चीजों को। अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन चीजों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, वहां अल्लाह ने उन्हीं को ओपन कर दिया। थोड़ा सा सब्र है बस, हराम से बच के हलाल से ख्वाहिशें पूरी कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें देगा। अजाब से महफूज, कोताहियों से दरगुजर, कोई गुना थे भी तो उनको माफ करके एक एक नेकी का कई गुना अजर दे दिया। और अब वो सब दे दिया जो दुनिया में कोई फ्लर्टी इंसान अल्लाह की हदों को पार करते हुए दुनिया में था, वहां अल्लाह अपने नेक बंदों को देगा। कास कहते हैं शराब के भरे हुए जाम को, भर जाए तो कास है, और खाली जाम हो तो उसको कदख कहते हैं, कदख। और माइन कहते हैं जारी चश्मे को, आइन चश्मा होता है, तो माइन जारी चश्मा। यानी वहां की शराब भट्टियों में नहीं बनेगी, लातों के साथ और पाओ के साथ मसल के अंगूरों से वो शराबें नहीं बनाएंगे, बल्कि चश्मे होंगे, जारी चश्मे। और आपको फ्लोइंग जो स्प्रिंग होता है वो तो वैसे ही पाक होता है और हर वक्त मौजूद होगी। दुनिया की शराब आमतौर पर बदरंग होती है, वह लजीज होगी, खुश रंग होगी। दुनिया की शराब पिए कोई तो उसे कै, वॉमिट, सर दर्द, बदमस्ती, बहकने का अंदेशा होता है, वहां ये कुछ नहीं होगा। दुनिया की औरतें आंखें खोल के पटर पटर देखने वाली होती हैं, वहां की औरतें आंखें झुकाए हुए बैठी होंगी, शुतर मुर्ग अपने परों के नीचे छुपाए हुए हों, जिस तरह जिनकी वजह से वो हवा और गर्दो गुबार से महफूज हों। देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि शुतर मुर्ग के अंडे बहुत खूबसूरत रंग के होते हैं, खुश रंग होते हैं, जर्दी माइल सफेद होते हैं, और ऐसा रंग हुस्नो जमाल की दुनिया में सबसे उम्दा समझा जाता है। बिल्कुल सफेद रंग भी नहीं अट्रैक्टिव लगता ना, हल्की सी पिलाहट हो, सुनहरापन। इसलिए ये तशबीह दी गई कि ये सिर्फ सफेद नहीं है बल्कि खुश रंग होंगे, खूबसूरत होंगे। क्या हमें इस जन्नत को पाने की कुछ ख्वाहिश रखनी चाहिए? क्या हम इसके लिए कुछ तैयारियां कर पाए? है कोई ख्वाहिश? ख्वाहिशें तो बहुत है माशाल्लाह, लेकिन याद रखिए जन्नत सिर्फ ख्वाहिशों पे नहीं मिलती, और जन्नत सिर्फ दुआओं से भी नहीं मिलती, जन्नत अमल से मिलती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। मैं और आप अगर जन्नत को पाने की कोशिशें कर लें, कितने दिन करेंगे? अपनी जिंदगी देख लें, अब आगे रह कितनी गई है, हम में से तो किसी को कुछ नहीं पता, आधी तो गुजार ही चुके हैं ना, और अगर वो भी जब अल्लाह हमें पूरी उम्र दे दे, पीछे क्या रह जाएगा? और नहीं गुजारी तो कोई बात नहीं, वक्त गुजरते पता कहाँ चलता है। 2014 से 15 हो गया, आपको पता चला? बिल्कुल भी नहीं पता चला। और 10 आयतों में आप देखिए अल्लाह ताला ने जन्नत की ये खूबियां बयान कर दी हैं। ऐसे लोग फिर वहां क्यों ना खुशियां मनाएं? बास कहते हैं रिस्कुम मालूम से ये भी मतलब है कि उनके वक्त मुयन होंगे, सुबह शाम बाकायदगी से दिया जाएगा, गैप नहीं होगा। एक जगह और पढ़ते हैं बुखरतम व अशिया, सुबह शाम है। इसी तरह रिस्क मालूम से कहते हैं वो दायमी और यकीनी रिस्क होगा, दुनिया की तरह नहीं कि कोई शख्स यकीन से ये कह ही नहीं सकता कि अगले सालों में मेरे पास कितना रिस्क होगा, चलती हुई फैक्ट्री बंद हो जाए या रेड़ी को अल्लाह तला किसी शॉप में बदल दे। दुनिया में हर वक्त लोगों को धड़का रहता है जॉब ना चली जाए, ये ना हो जाए, आज जो नेमत मेरे हाथ में कल किसी और के पास चली जाए, जन्नत में इसमें कोई खतरा नहीं होगा। ये अल्लाह की जात है जो इन सब चीजों को देती है। फिर आप देखिए फवाकेह के बारे में भी कुछ मुफस्सरीन की बातें सुन लीजिए। मेवा कहते हैं ना, एक होता है समरा, समर से सा, और एक होता है फवाकेह। समर मेहनत का भी होता है लेकिन फाकेह फ्रूट्स के मानों में होता है। हर वो चीज जो भूख की जरूरत रफा करने के लिए नहीं बल्कि लज्जत हासिल करने के लिए खाई जाए। आपने भी देखा होगा हम पाकिस्तानियों का तो अजीब ही हाल है, फ्रूट खा लें तो भूख कोई नहीं खत्म होती और लग जाती है। आप कभी खाली पेट सेब तो खा के देखे, 10 मिनट बाद अंदर से ऐसी खिंच पड़ेगी कि लगेगा दिल डूब रहा है। फ्रूट से भूख नहीं खत्म होती, सिर्फ लज्जत मिलती है। और जन्नत में खाने भूख के लिए नहीं है, लज्जत के लिए है, और इसके बहुत सारे मानी है। इमाम राजी कहते हैं कि इसी फवाकेह के लफ्ज से यह नुकता निकलता है कि जन्नत में जितनी गजाएं दी जाएंगी वो सब लज्जत बख्शने के लिए दी जाएंगी, भूख की हाजत दूर करने के लिए नहीं। इसलिए कि जन्नत में इंसान को किसी चीज की हाजत नहीं होगी, वहां उसको अपनी जिंदगी बरकरार रखने के लिए नहीं खाना, और ना हिफ्जाने सेहत के लिए खाना है कि ना खाया तो ये डेफिशिएंसी होगी और कैल्शियम कम हो जाएगा और पोटाशियम नहीं रहेगा जिससे मैं वहां सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश के लिए खाएंगे। लहुम फीहा मा यश्तहून, जिसको हम कहते हैं ना ऐसे ही चस्का लगाना, क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं ना, स्नैकिंग, हर वक्त कभी चिप्स का बैग खोल लिया, कभी कुकीज खोल ली, कभी कुछ खोल ली, यही हालात वहां दिखते हैं कैसे होंगे, लज्जत ही लज्जत। मुकरमून, मेहमान को पूरी इज्जत दी जाएगी। आप देखिए मेहमान की इज्जत ना की जाए ना तो लजीज से लजीज चीज की मिठास और उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं मैं आपके खाने का भूखा नहीं हूं, मेरे से बात करें अच्छी तरह। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह आप देखिए अला सुरूर मुतकाबिलीन को अपने जहन में लाएं, किसी की तरफ पुश्त नहीं होगी, कैसे ये तो अल्लाह ही जानता है। बस कहते हैं कि मजलिसों के दायरे इतने वसी होंगे कि किसी को किसी की तरफ पुश्त करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यानी बड़ा सा सर्कल लगाए ना, जैसे अब आप सबको कहा जाए कि आप सब बड़ा सा एक साइकिल बनाए तो बहुत जगह चाहिए होगी ना आपको, लेकिन अल्लाह ताला उनको बड़े से दायरे में बिठाएगा और अल्लाह ताला अहले जन्नत को देखने की, सुनने की और बोलने की वो ताकत देगा कि दूर बैठे हुए लोग भी बड़े आराम से बातें कर सकेंगे। जी, नो माइक, कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं, बड़ी स्क्रीन के अब पीछे वालों को तो नजर ही नहीं आ रहा। बास कहते हैं कि ये तक घूमने वाले होंगे, जिससे बात करनी होगी उसी की तरफ घूम जाएंगे, हम क्या जाने, जब जाएंगे तो देखेंगे। लज्जत लिशारबीन, असल में लफ्ज लुज्जा है इसके अंदर, लजीज होना, जाती लज्जा भी कहते हैं, यानी ये जाती लज्जत इन मुराद है, लज्जत वाली चीज जो भी है बस ये देखे कि होगी लजीज। लाफी गौलन, गौल कहते हैं सर के दर्द को भी और कोई कहता है कि पेट का दर्द, और इसकी तीसरी तफसीर बदबू और गंदगी, चौथी तफसीर अकल का बहक जाना, और ये सारे मानी गौल के लफ्ज में आते हैं। एक और मानी इमाम इब्ने जरीर कहते हैं गौल से मुराद आफत है, आफत क्लेमिटी, यानी जन्नत की शराब में ऐसी कोई आफत नहीं होगी जो दुनिया की शराबों में होती है। अब आप देखिए कासिरातु तरफ पे थोड़ा गौर कर लेते हैं, जन्नत की हुरूत की सिफात, निगाहें नीचे रखने वाली, मुराद यह कि जिन शोहरों के साथ इनका इज्दवाजी ताल्लुक अल्लाह ने कायम किया वो फिर इनके अलावा किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। जी, इमाम जौज़ी कहते हैं कि ये औरतें अपने शोहरों से कहेंगी मेरे परवरदिगार की इज्जत की कसम जन्नत में मुझे तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता, जिस अल्लाह ने मुझे तुम्हारी बीवी और तुम्हें मेरा शोहर बनाया तमाम तारीफें उसी के लिए। यानी नजरों से नीचा रखने से मुराद दूसरे मर्दों से बहुत बेतकल्लुफ होकर बात नहीं करती। इसी तरह एक और बहुत ही यूनिक मानी भी इमाम इब्ने जौज़ी ने लिखा, कहते हैं कि अपने शोहरों की नजरें नीची रखेंगी, यानी वो खुद इतनी खूबसूरत और वफाशार होंगी कि इनके शोहरों को किसी और तरफ नजर उठाने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर, दुनिया में अल्लाह ये किसी औरत को एजाज दे दे कि उसका मर्द कहे कि मुझे तुमसे ज्यादा तो कोई हसीन लगती नहीं है, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और को क्या देखना। मेरे लिए अक्सर औरतें इसी जुमले को सुनने को तरसती होंगी ना, लेकिन जन्नत में जाकर ये ख्वाहिशें सब की पूरी हो जाएंगी। फिर मर्द ना तस्वीरें देखेंगे, ना गंदी पिक्चर्स देखेंगे, ना रातों को छुपकर कुछ देखेंगे, उनको पता है मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत औरत कोई नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और वो छुपी हुई है पर्दों में। इस तरह से ऐसे लोग फिर वहां जाकर आएंगे। जो शराब की बात हुई, सूरत मोहम्मद में हम पढ़ेंगे जन्नत में नहर भी होगी शराब की, वनहार मिन खम्र लज्जत लिश्शारबीन के लफ्ज आते हैं कि जन्नत में शराब की वो नहरें हैं जो बहुत लज्जत वाली होंगी पीने वालों के लिए। फिर इसी तरह ये जो कहा गया कि शराब पिलाई जाएगी, तो यहां ये तो नहीं पता चल रहा कि कौन पिलाएगा, लेकिन कुरान पाक में इसका जिक्र हम मिलता है, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا, और इनकी खिदमत के लिए गर्दिश करेंगे ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही होंगे, तुम उन्हें देखो तो ऐसे समझो जैसे मोती है बखेर दी गई। ये जो भी बताया ये सूरह दहर की आयत है, बहुत हसीन, बाज लोग कहते हैं मुशरिकों के बच्चे होंगे जो बचपन में फौत हो गए। इसी तरह सूरह तूर आयत 24 में आता है, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ, इनकी खिदमत के लिए गर्दिश करेंगे इनके खादिम लड़के ऐसे खूबसूरत जैसे सदफ में छुपे हुए मोती। अल्लाह अकबर, क्या वो वक्त होगा। और रिवायत भी लिख लीजिए हजरत अनस हजरत सुमरा से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुशरिकीन के बच्चे अहले जन्नत के खादिम होंगे। अबू दाऊद और तबरानी और वज़ार की रिवायत है। सनद कोई इतनी मजबूत नहीं है लेकिन ये रिवायत मिलती है। और रिवायत में ये मिलता है कि जो बच्चे सने रुश्त को पहुंचने से पहले मर जाते हैं वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर बच्चा फितरत पे होता है। और जिन बच्चों के वालदैन जन्नती होंगे तो वो वहां अपने माँ बाप के साथ रहेंगे ताकि माँ बाप की आंखें ठंडी हों। पीछे वो लोग रह जाते हैं जिनके माँ बाप जन्नती ना हो, तो उनको रिवायत में आता है कि वो अहले जन्नत के खादिम होंगे। अल्लाह ने उसी वर्स फतहुल बारी और उम्दतुल कारी में आप पढ़ सकते हैं, ये बुखारी की तफसीर है, शुरुआत है, जिसके अंदर फिर इन रिवायत को मजीद देखा जाता है। अल्लाह ताला हमारे लिए इन सारी बातों को समझना आसान कर दे। तो आइए जरा अब हम देखते हैं। उम्मे सलमा से रिवायत है कि मैंने एक शायद का मतलब अल्लाह के नबी से पूछा कि ये जन्नत की औरतें इतनी हसीन जो बताई गई, ये क्या इसका मतलब है, यानी झिल्ली की तरफ इशारा है। तो आपने फरमाया कि इनकी नरमी और नजाकत उस झिल्ली जैसी होगी जो अंडे के छिलके और इसके गूदे के दरमियान होती है। अब ये सारा मंजर जहन में रखिए, जितनी बातें भी हैं।
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ